गुरुकुल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन ले रहे थे, तो वो पॉइंट पूरा हुआ। अगला पॉइंट डिस्कशन में है, जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। तो मैंने सोचा कि इसके लिए सबसे उपयुक्त स्पीकर हमारे संकीर्तन रस प्रभु, जिन्होंने बहुत ही इसके ऊपर रिसर्च कर कर एक सेमिनार प्रिपेयर कर रखा था और आज के गीतामृत के लिए इन्होंने उसको फाइन ट्यून किया है। तो मैं संकीर्तन रस प्रभु को इंट्रोड्यूस कर कर माइक उनके हाथ में दूंगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जिसको वो अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, एक जॉइंट फैमिली में रहकर सब लोग जो उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर जो हमारे डिवोटीज हैं कॉन्ग्रीगेशन के, हम सब वाकिफ हैं डॉक्टर देवधर परिवार से। पूरा फैमिली जो है डिवोशनल सर्विस में है, पूरी फैमिली एक ही छत में एक साथ प्रेम से रह रहे हैं इतने वर्षों से, कितने जनरेशन्स। तो ये सब वो अपने जीवन से सिखा रहे हैं, केवल बोलकर नहीं बल्कि अपने उदाहरण से, कि जॉइंट फैमिली में कैसे रह सकता है आज भी कोई 21वीं सदी में 2015 में, और उसके फायदे क्या हैं और उसके पीछे जो संस्कृति है उसका महत्व क्या है, तो वो आज बताएंगे। और इसके साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी हम सब के लिए, हमारा आने वाला जो बुधवार है उस बुधवार को हम बुधवार का कार्यक्रम न रखकर उसे हम एक दिन गुरुवार के दिन रखने वाले हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं।
हरी बोल, हरी बोल।
तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की
जय।
वो आने वाले हैं आने वाले गुरुवार को, और हमने सोचा क्योंकि बुधवार को नहीं आ पा रहे हैं, वो गुरुवार को आ रहे हैं। 27 तारीख है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अगले बुधवार के बदले हमारा कार्यक्रम जो है राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिया जाएगा, और वो होगा गुरुवार को आने वाले 27 तारीख को इसी महीने के। तो कुंभ मेला के उपलक्ष में महाराज आ रहे हैं, दो दिन यहाँ पर रहेंगे, और भी कार्यक्रम होंगे। लोकनाथ महाराज आ रहे हैं, तो उनके अभी तक फाइनलाइज नहीं है उनके डेट्स। लोकनाथ स्वामी महाराज की
जय।
तो लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, ये तो शुरुआत है। तो वो लोग आकर गोदावरी में शाही स्नान करेंगे और हम उनके कथामृत में शाही स्नान करेंगे। तो इसलिए ये खुशखबर हम आपको देना चाहते थे, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो हम आज का श्लोक फिर से रिसाइट करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो आइए सभी हम मिलकर स्वागत करें संकीर्तन रस प्रभु का और आभार व्यक्त करें तीन बार।
हरे कृष्णा। मुझे बहुत टेंशन आया क्योंकि अभी तक प्रभु जी नहीं थे, तब बुधवार का प्रोग्राम लेना अलग बात है, और प्रभु जी के सामने बुधवार का प्रोग्राम लेना, महाराज के पहले बुधवार का प्रोग्राम लेना, मुझे तो ऐसे 12th का एग्जाम दे रहा हूं ऐसे लग रहा है। तो भाषांतर है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। और प्रभु जी ने जो सीरीज चालू की है, तो भगवान को तत्वतः जानने के लिए वैदिक संस्कृति तथा समाज रचना को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी वो हमें हर दिन हर क्षण महसूस नहीं हो रही है। बहुत सारी पाश्चिमात्य चीजें हमारी संस्कृति पे हावी हो चुकी है, तो उनको अलग करना और उसमें से, क्योंकि भगवान को तत्वतः जानना असंभव है पाश्चिमात्य दृष्टिकोण से, इसीलिए हमें हमारा जो दृष्टिकोण है जिसको वैदिक सनातन दृष्टिकोण कहते हैं वो जानना जरूरी है। तो अभी तक जो कुछ हुआ है, जैसे अर्थव्यवहार के बारे में प्रभु जी ने कहा है, बाद में गुरुकुल के बारे में माने शिक्षा पद्धति के बारे में प्रभु जी ने कहा है, तो आज हम परिवार के बारे में, परिवार विचार के बारे में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो प्रभु जी ने जैसे कहा है कि संयुक्त परिवार और विभक्त परिवार, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो परिवार विचार में जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं वो सब चीजें संयुक्त परिवार पद्धति को लागू होती है। बाद में हम जो विभक्त परिवार पद्धति है या एकल परिवार पद्धति है, जिसको अच्छे भाषा में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वैदिक संस्कृति तथा समाज रचना का एक महत्वपूर्ण अंग है परिवार, और इसे परिवार व्यवस्था कहा गया है, क्योंकि इस व्यवस्था के ऊपर बहुत सारे चीजें डिपेंड करती है, अवलंबन है। जैसे समाज रचना में भी परिवार महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति के जीवन में भी परिवार महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति का जो औदा है वो भी उसका, उसके परिवार का क्या है स्टेटस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका पहले के जमाने तो उसका कार्य क्या होता है, वो आगे जाके क्या बनेगा, वो भी उसके परिवार पे डिपेंड होता था। तो इसलिए परिवार एक बहुत बड़ी वैदिक संस्कृति की एक इकाई है जिसको हमें जानना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परिवार के प्रयोजन क्या होते थे। सबसे पहले परिवार क्यों अस्तित्व में आए, तो व्यक्तिगत संरक्षण के लिए परिवार अस्तित्व में आए। वो शारीरिक हो सकता है, जैसे हर एक इंसान खुद के लिए अन्न बनाएगा, उसको पकाएगा और खाएगा, और बाद में वापस दूसरे दिन वापस अन्न के लिए वो चिंतित रहेगा, तो उससे अच्छा है कि परिवार समझो एकत्रित आएगा, तो कोई तो अन्न के लिए काम करेगा, कोई पकाएगा और बाद में कोई परोसेगा, कोई खाएगा। तो ऐसा जो डिवीजन ऑफ लेबर होता था, और सब चार पांच छह सात आठ लोग जो एक साथ रहते थे, तो कभी कोई बीमार हो गया, कोई कभी किसी को काम पे जाना न हुआ, तो भी ऐसे नहीं होता था कि अरे आज मैं काम पे नहीं गया तो मुझे आज शाम को खाने को नहीं मिलेगा। तो परिवार इस अन्न की सुरक्षा हमें करता है। अन्न की सुरक्षा करने के लिए अन्न सुरक्षा विधेयक की जरूरत नहीं है, परिवार स्ट्रांग हो जाएगा तो अपने आप हर एक की अन्न की सुरक्षा हो जाएगी। वैसे ही वस्त्र, आवास, और कोई समझो कोई आक्रांता है, आक्रमण करने वाले है, कोई पशु है, उससे हमारी रक्षा ये परिवार करता है। दूसरा, मानसिक संरक्षण भी करता है हमें, क्योंकि हर एक को एक स्व की पहचान होती है, और वो पहचान चली गई तो वो बराबर वर्तन नहीं कर पाता, या वो खुद को इंसानियत के नाते नहीं देख पाता। तो एक परिवार हमें प्रेम देता है, हमें बड़ा करता है, और हमें एक संबंध देता है जिससे हम पहचान सके, समाज हमें पहचान सके। तो बाद में आर्थिक आश्रय देता है, जैसे कि मैंने कहा कि आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक आश्रय। कोई अकेला काम कर रहा है, कॉलेज से अभी अभी छूटा है, घर परिवार कोई नहीं है और उसका काम छूट गया, तो उसको जितना तनाव महसूस होगा उससे अच्छा समझो पांच लोग है, पांच लोग कमा रहे हैं परिवार में और एक का कहीं जॉब छूट गया या उसमें आर्थिक थोड़ा सा फटका लग गया, उसको मुनाफा नहीं हुआ, घाटा हो गया, तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी तो मुझे एक फैमिली मालूम है, उनका सरनेम मानसिंह का है, वो पांच भाई है, उसमें से एक जो भाई है सुनील जी मानसिंह का, जिनको मैं पहचानता हूं, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन गोवंश की रक्षा के लिए दिया है और उनके चारों भाई जो है बाकी, उन्होंने कहा है कि जो हमारे घर में पकेगा वो तुम्हारे घर में पकेगा, तो तुम्हारी पूरी आर्थिक व्यवस्था है वो हम चारों निभाएंगे। तो जब एक जो परिवार संयुक्त होता है, जब परिवार होता है तो ऐसे कुछ कार्य भी हो सकते हैं आर्थिक चिंता की जरूरत नहीं होती। दूसरी सामाजिक, हमें हमारा जो परिवार है हमें समाज में पहचान देता है और प्रतिष्ठा भी देता है, और प्रतिष्ठा के साथ फिर दायित्व भी आ जाता है, वो प्रतिष्ठा को हमें मेंटेन करना पड़ता है, फिर वो कुल रीति बन जाती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, या कुरुकुल जिसको कहते हैं कि कुरुवंश जिसको कहते हैं, तो वो वंश में हम आते हैं, वो कुल में हम आते हैं, तो कुछ समाज भी हमसे एक्सपेक्ट करता है, अपेक्षाएं रखता है और हमें वैसा स्टेटस भी देता है। तो प्रतिष्ठा और पहचान भी व्यक्ति की हमारे परिवार से आते हैं, और आध्यात्मिक भी हमारी रक्षा परिवार करता है। कैसे करता है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, हमें कुछ मर्यादाएं डाली जाती है कि ठीक है हमारा वारकरी संप्रदाय का परिवार है, तो वारकरी संप्रदाय का मतलब क्या है कि हम हरिनाम लेंगे, हम जुआ सट्टा नहीं खेलेंगे, हम निर्व्यसनी रहेंगे, मांसाहार का त्याग करेंगे। तो फिर जब उस परिवार में वो बच्चा पैदा होता है तो अपने आप उसकी आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत सिर्फ पैदा होने से ही चालू हो जाती है। तो ये जो और कुलाचार भी रहते हैं, समझो कोई परिवार थोड़े निम्न काम करते होंगे, जैसे कोई मांसाहार में लगा है तो भी उनके कुछ कुलाचार होते हैं, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अन्य देवताओं की शरण में जाना भी मैंने ही बताया है, तो वो धीरे धीरे करके कुछ कुल परंपराओं का पालन करते 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 वो विकसित होते हैं। जब परिवार टूट जाता है तो ये मर्यादा भी टूट जाती है और कुलाचार भी टूट जाता है। दूसरा क्या है, सिर्फ संरक्षण नहीं है, ये संरक्षण तो हम प्राणियों के जगत में भी देखेंगे कि छोटे 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 जब बच्चे रहते हैं तो उनको उनके माँ पिताजी संरक्षण दे देते हैं, लेकिन वो परिवार का परिवार संकल्पना वही सीमित नहीं है, तो परिवार में व्यक्ति का विकास भी अपेक्षित है, हम जहां हैं वहां से थोड़ा आगे जाए। तो वो क्या है, तो शरीर का विकास कैसे होता है, तो शरीर का विकास शिक्षा से होता है, और शिक्षा कहां से चालू होती है, परिवार से चालू होती है। कब चालू होती है, पैदा होते समय या पैदा होने से पहले से ही चालू हो जाती है। तो शिक्षा इसीलिए क्या कहते हैं, सबसे पहला गुरु कौन है, माता प्रथमो गुरु, पिता द्वितीय गुरु, और बाद में तीसरे जो है वो स्कूल के शिक्षक रहेंगे तो वो बाद में गुरु होते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा हमें हमारे परिवार में मिलती है, और इसलिए हमारे परिवार में समझो हमें कुछ गलत शिक्षा मिली तो फिर बाहर हम कौन से भी कॉलेज में जाए, कौन से भी इंस्टीट्यूट में जाए, वो बहुत रिनाउंड भी रहेगा तो भी हम सुधरेंगे नहीं, क्योंकि पहली जो हमें शिक्षा मिलती है वो इम्प्रेशन हो जाता है हमारे हृदय पे कि वही हमें सत्य लगता है। तो ये हो गई शारीरिक शिक्षा। मानसिक क्या होता है, संस्कार होते हैं जो 16 प्रकार के हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो मानसिक संस्कार भी होते हैं। संस्कार से क्या क्या होता है, तो संस्कार से वो छोटे बच्चे को और उनके माता पिता को ये समझ में आता है कि हमारी मानसिक स्थिति, मानसिक दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए जिससे हमारा विकास बहुत जल्दी हो सके। और दूसरा, हर एक संस्कार में, वैदिक संस्कार में आप देखेंगे तो वैसे तो 64 संस्कार थे और हमारे यहां 64 संस्कार, 64 कला, 64 जाति देखा जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से हर एक संस्कार में हर एक जो जाति थी, ज्ञाति थी, तो उसके व्यक्ति का सम्मान भी किया जाता था। जैसे जब कर्ण भेदन होता है तो किसको बुलाते हैं? सुनार को बुलाते हैं। जब अन्न प्राशन होता था तब धोबी को बुलाते थे। तो ऐसे हर एक संस्कार के समय वो बच्चे का, वो जो लोग है जो समाज के लिए काम कर रहे है, इनको इंट्रोडक्शन सेशन होता था, तो तब से उसका रिस्पेक्ट बढ़ता था उनके लिए। तो ये हो गया संस्कार। आर्थिक क्या होता है, हम परिवार में देखते हैं तो हमें कौशल सिखाए जाते हैं। पुराने जमाने में, अभी तो ऐसे कहते हैं कि वैदिक जमाने में तो ऐसा था कि हर एक परिवार का एक प्रोफेशन था और उसके हिसाब से ही वो जिसको जिसको जो ज्ञान है, जो कौशल का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान होने वाले सब लोग जब इकट्ठा आते थे तो उसको ज्ञाति कहते थे, जिसको जाति बन गया। तो फिर ये परिवार में ही, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की कथा में देखते हैं या राम लक्ष्मण की कथा में देखते हैं कि वो बच्चे बड़े होते होते ही उनका प्रोफेशन वो सीख जाते थे। भगवान 8 साल के थे तभी उनको दूध कैसे निकालना चाहिए, गाय को कौन सी घास कब खिलानी चाहिए, कब उनको लेके जाना चाहिए, कहाँ खिलाना चाहिए, कहाँ पानी पिलाना चाहिए, कब वापिस लाना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हमारे वैदिक सभ्यता में 8 साल की उम्र में ही सबको मालूम रहती थी। तो फिर सवाल आता था कि 8 से 16 और बाद में मैं क्या करूं। फिर वो लड़का सोचता था, वो लड़की सोचती थी कि अभी तो मेरा पेट अभी भर गया है, अभी कुछ कौशल ऐसे बढ़ाएंगे कि जिससे हमारे परिवार का नाम और उजागर हो जाएगा। तो वो फिर समझो बुनकारी करता होगा तो वो और अलग डिजाइन बनाएगा, कोई कपड़ा सिलाता होगा तो और रेशम का छोटा छोटा करके मैच बॉक्स में बैठने वाला इतना साड़ी बनाएगा। तो ये सब जो 17वीं सदी तक हमारा जो सब एक्सलेंस था, कार्य कुशलता थी, वो ये परिवार के कारण थी, हर एक परिवार में। और दूसरा ऐसा नहीं था कि समझो मुझे आज से मेरे परिवार का जो प्रोफेशन है वो अच्छा नहीं लगता है तो मैं झट से दूसरे दिन दूसरा चालू करूं, उसके लिए भी नियम थे। 12 साल वो परिवार में रहना पड़ता था तो फिर वो परिवार वाले एक्सेप्ट करते थे और उसका हुनर सिखाते थे। तो हर एक के लिए प्रोफेशन फिक्स था और कंपटीशन कम था, इसलिए कला ज्यादा था, कला कर सकते थे। सामाजिक शिष्टाचार भी सिखाया जाता है, कोई बड़े आए तो कैसे बर्ताव करना चाहिए, गुरु आ गए तो गुरु के सामने कैसा नमन करना चाहिए, हमारी ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारी जो आराध्य देवता है तो उनके सामने क्या करना चाहिए, कौन कौन से सामाजिक त्योहार आते हैं तो उनको हमें जाना चाहिए और हमारे तरफ से हम क्या देते हैं, तब दान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये जो सामाजिक शिष्टाचार है वो भी परिवार में ही सिखाया जाता था। और आध्यात्मिक साधना और परंपरा, इसका विकास वो करते थे। अभी हमें मालूम रहेगा कि कोई हमारे हम में से रहेंगे, जैसे मैंने वारकरी संप्रदाय बोला, कोई कीर्तनकारों में से होते होंगे, कोई पंडित होते होंगे, कि उनकी कुछ परंपराएं होती है और वो परंपराएं और विकसित करने का काम आगे की पीढ़ी करती है। तो ये काम हमारे परिवार में होता था। अभी इस परिवार की व्याख्या इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संयुक्त परिवार में होता था, एकल परिवार या विभक्त परिवार में ये असंभव है। और क्या प्रयोजन थे परिवार के? सिर्फ व्यक्ति विकास के ही प्रयोजन नहीं थे। तो परिवार, ये संस्था वर्णाश्रम का रक्षण करता था। वर्णाश्रम का रक्षण यानी क्या? आश्रम कौन कौन से है? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उसमें से सिर्फ गृहस्थ आश्रम खुद के लिए और बाकी समाज के लिए अर्थार्जन कर सकता है, तो उन गृहस्थों के लिए बाकी तीनों आश्रमों को कैसे वो सपोर्ट कर सके, इसके लिए नियम बनाए जाते थे। और ये नियम हर परिवार में बताए जाते थे कि हमें ये करना है, अतिथि आए तो उनका सत्कार ऐसे करना है, कोई सन्यासी या यति आए तो उनको उच्चासन पे बिठाकर उनको सवाल करने हैं हमारे जीवन के बारे में। वैसे जो वर्ण व्यवस्था थी, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तो उनके आपस में संबंध कैसे होने चाहिए। अभी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था मिक्स हो गए हैं, लेकिन वर्ण और ज्ञाति अलग अलग होते थे, उसके बारे में चर्चा 2 घंटा चलेगी, इसलिए उसको मैं अभी सिर्फ वो अलग अलग है इतना बता के छोड़ देता हूं। तो वर्ण और आश्रमों का रक्षण करना भी ये परिवार का काम होता था। अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, आप जरा मन में भी सोचिए कि अभी ये व्यवस्था क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि हमारे परिवार टूट गए हैं, इसलिए कौशल नहीं दिख रहा है। सब लोगों को सिर्फ डिग्री दिखा के काम चाहिए, उनको पूछा हाथ से क्या आता है तो वो बोलेगा मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ डिग्री है, साइन कर सकता हूं, मुझे नौकरी दो। तो वैसे क्यों नहीं, क्योंकि परिवार टूट गए, परिवार में माता पिता गाइड नहीं कर पा रहे बच्चों को। तो सामाजिक उत्थान ये भी परिवार का काम होता था। अभी ये कुंभ मेला, अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ तो 1000 करोड़ उसको दिया है, लेकिन कुंभ मेला तो थोड़ी कांग्रेस या बीजेपी के शासन में चालू नहीं हुआ है, या ब्रिटिशों के शासन में चालू नहीं हुआ है, उससे पहले भी चालू है, महाभारत रामायण काल से चालू है। तो तब इनको इतना सारा धन कहां से आता था, इतने सारे साधुओं की व्यवस्था कैसे होती थी। तो तब ये जो सामाजिक उत्थान, यानी हर परिवार का खुद का एक कोष होता था और समाज के लिए एक अलग कोष होता था, और उस कोष में जैसे जैसे मेरे घर में जो कुछ धन आता है, अनाज आता है, तो उसमें से एक हिस्सा समाज के लिए जाता था, वो समाज कंज्यूम करके भी बचता था, वो बचा हुआ हिस्सा जो रहता था वो 12 साल में पूरा का पूरा दे देते थे, सबसे नजदीक जो कुंभ मेला है उधर। तो समाज का उत्थान करने के लिए जब कोई जो विचार करने वाले लोग है, जो समाज के लिए सोचने वाले लोग है, जिनका खुद का अर्निंग नहीं है कुछ, वो खुद कमाते नहीं, उनको सपोर्ट करने का काम भी हमारे परिवार करते थे। सृष्टि का दोहन भी परिवार करता था। सुसृष्टि का दोहन का मतलब क्या है, दोहन और शोषण में क्या फर्क है, दोहन किसको बोलते हैं, दोहन ये शब्द किसके लिए यूज करते हैं, गाय का दूध निकालना। और दोहन क्यों है, वो एक्चुअली दो थन, गाय के दो थन है वो मानव के लिए और दो थन उसके बछड़े के लिए। तो पहले के जमाने में दो ही इसका दूध निकालते थे और दो बच्चों के लिए छोड़ देते थे, इसलिए फिर बच्चे भी अच्छे हो जाते थे। अभी स्लॉटर हाउस में नहीं गए तो अपने आप मर जाते हैं, वैसा है, क्योंकि दूध ही नहीं पिलाते उसको, सब कुछ मानव खींच लेता है। तो वो हो गया शोषण। अभी आप होस्टेन गाय को देखोगे, वो मशीन से जब तक खून नहीं आता तब तक रोकते नहीं है दूध निकालना मशीन लगा के। तो सृष्टि का भी ऐसा ही शोषण अभी हम कर रहे हैं, लेकिन परिवार जो होते थे वो सृष्टि का दोहन करते थे। और अभी अभी भी आपने अभी मेरे साथ एक काम करते हैं, तो वो एमपी के रहने वाले हैं, वो उन्होंने कहा कि 30 साल पहले उनके दादाजी ने उनके गांव में पूरे जो मेन रास्ता रोड है उसके बाजू में 5 लाइन में आम के वृक्ष लगाए, 5 लाइन में। और उसका नियम क्या था कि मेरे परिवार का जो आदमी वो आम का फल खाएगा उसको आगे पुत्र नहीं होगा, माने संतान ही नहीं होगी। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, ये मेरा, इसको ये पेड़ आपके लिए है ही नहीं, ये मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। और 5 लाइन क्यों, क्योंकि उनको मालूम था कि रास्ता बढ़ेगा तो एक एक कटेगा, फिर भी लोगों को आम मिलने चाहिए। तो ऐसे कितने परिवारों ने कितना काम करके रखा था। एक वाणी समाज है हम में, जिसको हम कंजूस मानते हैं, लेकिन सारे के सारे जो अन्न छत्र होते थे वो ये लोग संभालते थे, क्योंकि उनके लिए स्टेटस सिंबल ये था कि कितने लोगों को खिलाया, ना कि मैंने क्या पहना। तो ये सब जो है सृष्टि का दोहन करना, ये काम भी परिवार करता था। उसमें भी जो परिवार के पुरोहित लोग थे, पुरोहित ये नाम ही ऐसा था कि जो पुर का हित करेगा वो पुरोहित, और कितने छोटे छोटे चीजों से वो सृष्टि का दोहन करता था। जैसे नदी में, तालाब में, समझो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय डुबकी लगाना है, डुबकी लगाओगे तो एक मुट्ठी मिट्टी निकाल के बाहर रखना है। ऐसे 500 लोगों ने डुबकी लगाया, अपने आप वो 500 जो 500 मुट्ठी मिट्टी बाहर आ जाता था, उतना उसका कैपेसिटी बढ़ता था। उसके लिए अलग टेंडर निकालने की जरूरत नहीं रहती थी। तो सृष्टि का दोहन ये भी परिवार करता था। और मैंने जैसे बताया कि जब आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, मुझे आज क्या खाने को मिलेगा और कल मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरे लिए मेडिक्लेम का हफ्ता कौन भरेगा, ये टेंशन नहीं रहता है, तो कला का भी सृजन होता है, कला विकसित होती है। तो ये भी काम परिवार करते थे। इसके लिए नए नए कॉलेजेस नहीं थे, मैंने जे स्कूल वगैरह नहीं था तब, फिर भी अभी जो पढ़ा रहे हैं कला विद्यालयों में, उससे बहुत बेहतर कला तब थी परिवारों में। उद्योग का वर्धन होता था, उद्योग भी बढ़ते थे, उसमें भी रिसर्च होता था। आज सिर्फ पानी पीने के लिए मटका बनाया है, कल उसमें दही लगाने के लिए अलग मटका बनाएंगे, बाद में सिर्फ वो सिर्फ काम के लिए क्यों, उसमें भी कुछ डिजाइन बनाएंगे, ऐसा कुछ कुछ होते। उद्योगों का भी वर्धन होता था और धर्म का संस्थापन होता था, समाज धर्म का और साथ ही साथ मानव धर्म का और अध्यात्म का जो एक ऐसा नेटवर्क था, वो सब कुछ उस परिवार के लिए, परिवार के साथ साथ वो भी होता था। परिवार एक साथ होने से क्या होता था कि बहुत कम काम होते थे हर एक इंसान को, क्योंकि कामों का बराबर बंटवारा होता था। तो फिर शाम को क्या, शाम को सब लोग कीर्तन करते थे, प्रवचन करते थे, कुछ बड़े कोई आदमी आए तो उनसे कुछ सुनते थे। तो ऐसे करके जो धर्म है उसकी संस्थापना भी करता था। तो उत्थान, रक्षण, उत्थान, दोहन, सृजन, वर्धन और संस्थापन, ये सामाजिक काम भी परिवार करता था। तो जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने तोड़ी, तो वैसे ही हमारी ये परिवार की जो सिस्टम है वो अंग्रेजों ने तोड़ दी। पहले थोड़ी थोड़ी टूटी, लेकिन सबसे बड़ा आघात अंग्रेजों ने दिया। इसका भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जिस जिस बड़े बड़े संस्थानों पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था, वो कांग्रेस के काल में टूटी परिवार की व्यवस्था। नहीं तो बाकी सब जहां डायरेक्ट ब्रिटिश शासन था वो 150 साल में ही टूट गई थी, 150 साल पहले। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये तो उनका प्रिंसिपल था, डिवाइड एंड रूल। हमें हमेशा लगता है डिवाइड एंड रूल ये प्रिंसिपल उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में या ब्राह्मण उच्च वर्ग और निचले वर्ग के बीच में लगाया, नहीं, उनका ये भी था डिवाइड एंड रूल थ्रू एजुकेशन। जो एजुकेशन के हमने चर्चा की उसमें वो आ भी गया, लेकिन वो सिर्फ सामाजिक लेवल पे नहीं था। ये जो उन्होंने दरार पैदा की वो सिर्फ समाज में ना होते होते उसका जो मेन इकाई है परिवार, उसमें भी वो दरार आ गई और परिवार टूटने लगे। और परिवार टूटने के बाद समाज टूटने को क्या टाइम लगता है, वो तो अपने आप वैसे ही टूटने वाला था, वो टूट गया। तो कैसे किया, तो उसमें भी कुछ आयाम है। सबसे पहले है आर्थिक आयाम। हमारा वैदिक सिद्धांत तो क्या कहता है, सबसे उत्तम क्या है, खेती, मध्यम है व्यवसाय और कनिष्ठ है चाकरी या नौकरी जिसको हम बोलते हैं। यानी खेती सबसे उत्तम है ऐसा क्यों बोला गया वैदिक काल में, क्योंकि खेती परिवार के सिवा हो ही नहीं सकती। खेती निसर्ग अपने पर्यावरण के रक्षण के बिना हो ही नहीं सकती। खेती भगवान पे विश्वास रखने से सिवा हो ही नहीं सकती। तो जो कुछ मानव का जो मानव जन्म में हमारा जो अंतिम ध्येय है वो बहुत आसानी से खेती से हम प्राप्त कर सकते थे, इसलिए खेती सर्वश्रेष्ठ बोला गया था। और जो किसान होता है उसको उस सबको भी अनाज देता था, इसलिए उसका सम्मान भी बहुत अच्छा था। हालांकि भारत कृषि प्रधान नहीं था, ब्रिटिशों के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटिश आ गए तब 25% भारत की जनता किसान थी, बाकी लोगों के पास छोटे 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 खेत थे लेकिन उनका व्यवसाय था कुछ तो। और इसलिए तो भारत सिर्फ खेती से कोई राष्ट्र इतना बड़ा नहीं होता कि सारे यूरोप को ढूंढने के लिए निकालना पड़े कि ये कहाँ गया है, कहाँ ये देश कहाँ है, हमें ढूंढना है। तो दूसरा व्यवसाय, व्यवसाय भी आज की तारीख में आप किसी से भी पूछो आपका कैसा चल रहा है, वो बोले स्कोप तो बहुत है लेकिन विश्वास का आदमी नहीं मिलता। बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत स्कोप है लेकिन तो वो विश्वास का आदमी कहां से मिलता था? परिवार से मिलता था। जब तक ये प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियां नहीं थी तब तक जो गुजराती और मारवाड़ी समाज जो व्यवसाय करते थे उसमें कभी चाकरी नहीं होती थी, वो परसेंटेज पे बिजनेस करते थे कि चलो तू आ गया ना, तू 5% का भागीदार लेकिन तू भी मालिक। क्योंकि आत्मा का जो मूल क्वालिटी है स्वातंत्र्य, वो किसको बेचना ये सबसे बुरा का माना जाता था जो नौकरी में होता था, कि तुम्हें सब कुछ है लेकिन स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वो सबसे निम्न था। ब्रिटिशों ने सबसे पहले उल्टा कर दिया, सबसे उत्तम नौकरी, बाद में व्यवसाय और कनिष्ठ खेती, क्योंकि हम तो उनको कुछ प्रोटेक्शन देने वाले नहीं, क्योंकि हमारी खेती थी वो समाज के प्रोटेक्शन से चलती थी। समाज डिसाइड करता था कि अभी पानी कम रहेगा तो कौन, और बाय द वे अभी ये विषय के अनुसार जो हर एक खेती में कौन सा अनाज कौन बोएगा ये कौन सी जाति डिसाइड करती थी आपको मालूम है? ब्रिटिशों के पहले महार, वो पानी देते थे हर एक खेत को, तो एक साल एक को ज्यादा पानी दिया जाता था तो वहां वो कॉटन या गन्ना वगैरह लाता था, तो दूसरी बार वो पानी दूसरे खेत को जाता था तो फिर यहाँ वो गेहूं बाजरा पैदा करता था। और वो सब डिसाइड करते थे ये जाति वाले, जिनको ब्रिटिशों ने दिमाग में डाल डाल के कर दिया बीसी बैकवर्ड क्लास, जो डिसाइड करते थे कि, और वो जब सब कुछ अनाज मिलता था तो वो परिवार कितना रखेगा, समाज को कितना देगा और कितना स्टोरेज में जाएगा वो भी ये डिसाइड करते थे। कितना बड़ा काम था। तो उत्तम नौकरी करने के बाद क्या हुआ, अभी परिवार का चित्र देखो, एक खेती वाला परिवार है और एक नौकरी वाला परिवार है। नौकरी में क्या हो गया कि उसने अपना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वक्त है जीवन का, वो दिन का, वो किसको दे दिया? मालिक को, जिसके पास वो नौकरी कर रहा है। तो अभी मालिक कहेगा वैसे उसको करना पड़ेगा ना, उसका स्वतंत्रता हो गई है। अभी कौन सा मालिक है जो नौकर ने 100 रुपए का काम किया तो उसको 200 रुपए देगा? कोई भी नहीं देगा। कम से कम 500 रुपए का काम किया तो 100 रुपए मिलेगा, क्योंकि बाकी तो इनका अदर एक्सपेंसेस में जाता है ना, और प्रॉफिट तो होना चाहिए क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं। तो अभी फाइव टाइम्स ज्यादा काम करने से फिर वो परिवार के लिए क्या समय देगा? दूसरा, नौकरी थोड़ी कि मेरे घर में आके कि चलो तुम इधर ही बैठो और मैं आपको तनख्वाह देता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसको घर से तोड़ दिया, चलो शहर में आओ, चलो आपके गांव से दूर जाओ, बॉर्डर पे जाओ, कहीं तो भी जाओ लेकिन घर में मत बैठो, क्योंकि फिर परिवार व्यवस्था टूटेगी नहीं। फिर ज्यादा समय वो दूसरे के लिए दे रहा है, घर से दूर चला गया है, तो उनको बड़ा घर ये तकलीफ लगने लगी जिनको नौकरी मिल रही थी कि अरे ये तो प्रॉब्लम है मेरे लिए, ये बड़े बूढ़े मेरे लिए प्रॉब्लम है, ये सब इतना बड़ा परिवार मेरे लिए प्रॉब्लम है, और समझो मुझे मेरे बच्चों को सिखाना है वही नौकरी करने के लिए, तो बाकी फिर बाकी लोगों को सिखाना पड़ेगा, अच्छा मैं सेपरेट हो जाता हूं। वैसे परिवार तोड़ा। दूसरा, सामाजिक तौर से भी तोड़ा। वैदिक सिद्धांत कहता है कि सामाजिक जीवन एवं व्यवहार का केंद्र परिवार है। परिवार के लिए त्याग करना, व्यक्तिगत त्याग करना, ये किसी को त्याग लगता ही नहीं था। उन्हें मुझे शिक्षाष्टकम प्रभु ने एक कथा बताई थी उनके जीवन की, मुझे अभी याद आई। जब वो राजस्थान में नानी के पास जाते थे तो नानी सुबह उठने के बाद पूरा दिन भर इतना काम करती थी। और एक बार उन्होंने बहुत अच्छे कुछ व्यंजन बनाए थे जो उनको बहुत भाए। तो अभी इनका पूरा परिवार बंबई में पड़ा हुआ था और बंबई में तथाकथित एटिकेट्स सिखाए गए थे उनको स्कूल में। तो उन्होंने जाके नानी को बोला, थैंक यू नानी। तो नानी ने ऐसे उनके तरफ देखा कि क्या है ये, तो मेरा दायित्व है परिवार के लिए, ये तो इट्स नेचुरल, मैंने इसके लिए थैंक यू। जैसे मुझे मेरे नाना जी की याद आता है, नाना जी मेरे स्वयं के एक बार डेढ़ साल और एक बार 9 महीना जेल में थे स्वातंत्र्य के समय में। तो उनको वो पेंशन के लिए सरकार ने बोला कि आप पेंशन ले लो, तो उन्होंने सीधा बोला, माँ की सेवा के लिए पेंशन? माँ की सेवा करने के लिए कोई पैसा लेगा तो उसका क्या होगा? तो ये लोग थे, क्योंकि उनके परिवार बहुत स्ट्रांग थे, तो उनके लिए ना कोई मेहमान आ रहा है तो मेरे पास कितना स्क्वायर फुट है वो कभी दिमाग में ही नहीं आता था, उनका हृदय इतना बड़ा था। अभी हम बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, एक्चुअली दिल में जगह नहीं है, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं। तो हर एक व्यवहार का केंद्र परिवार था। तो कोई बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, तथाकथित आगे जा रहा है ब्रिटिशों की संकल्पना से, तो भी उसको बोला जाता था कि बेटा तुझे सबको साथ लेके जाना है, तू अकेला नहीं जा सकता। इसलिए हमारे पहले के जमाने में जो सबसे ज्यादा पढ़ता था उसकी सबसे लास्ट शादी होती थी, क्योंकि उसको बाकी सब लोगों को एस्टेब्लिश करके फिर उसको खुद के परिवार के बारे में वो सोचता था। अभी वो एक बार बाहर अपने घर के दायरे से बाहर चला गया, वो सोचता है बाहर के बाहर ही जॉब लग जाए और आउट ऑफ कंट्री जाए तो अच्छा है, क्योंकि घर में कुछ करना भी नहीं पड़े और माँ पिताजी भी फोटो के तरफ बोलते, मेरा बच्चा यूएसए में, मेरा बच्चा इधर है ऐसे। तो परिवार का महत्व उतना था और जीवन का उद्देश्य भी मुक्ति था। जीवन का उद्देश्य मनुष्य देह अभी प्राप्त हुआ है तो अभी इससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना है, यही एकमेव ध्येय था। मार्ग अलग अलग होंगे, तो ये दोनों के कारण हर एक चीज के तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग था। जिसको हम ब्रिटिश सिद्धांत कहेंगे या जिसको एंग्लो सैक्सन सिद्धांत कहेंगे या उसको यूरो अमेरिकन सिद्धांत कहेंगे, आप जो पिछ को पश्चिमी सिद्धांत कहेंगे, तो उनका क्या है, सामाजिक जीवन एवं व्यवहार का केंद्र व्यक्ति है। हमारे भारतीय परंपराओं में जब तक ब्रिटिश नहीं आए तब तक व्यक्ति विकास नाम की संकल्पना नहीं थी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल स्पेस कुछ नहीं था। वो कहते थे कि हर एक दूसरे को पर्सनल स्पेस दो, वो बाकी सब अपने आप हमें भी स्पेस दे देंगे। हम सबका विकास चाहे तो सब में हम भी आ जाए, तो सब लोग सबका विकास करेंगे तो अपने आप हर एक का विकास होगा। लेकिन अभी क्या हो गया, व्यक्ति जब केंद्र बन गया हर एक चीज का, तो शादी भी डिफिकल्ट होने लगी, क्योंकि शादी में भी मेरा व्यक्तिगत जो कुछ स्वार्थ है उसमें से कुछ छोड़ूंगा तो ही दूसरा कुछ छोड़ने को तैयार होगा। फिर मैं कितना छोड़ता हूं और वो कितना छोड़ता है, इसमें फिर टसल चालू हो गई। तो यहां शादी नहीं होती बराबर तो वहां परिवार कब आएगा, ऐसा हो गया। तो व्यक्ति जब आ गए केंद्र स्थान में कि मेरा विकास, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरे लिए समय कितना है, जब मेरा 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 हो गया तो परिवार धीरे 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 टूटने लगा। और जीवन का उद्देश्य भोग है। आज मेरे पास कितना स्क्वायर फुट का बंगला है, मेरे पास कितना गाड़ी है, मेरे पास कितनी जमीन है, इसके ऊपर ही मेरा इवेल्युएशन है। सबको मालूम है सबको छोड़ के जाना है, उसी को भी ऐसा दिया नहीं है किसी ने सर्टिफिकेट कि यार तू नहीं तो एक वन स्क्वायर फुट बाय वन स्क्वायर फुट लेके जाएगा। लेकिन फिर भी उसके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं और उसके लिए संबंधों को तोड़ रहे हैं, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन चालू हो गया जो अभी भी चल रहा है एक्चुअली। दूसरा, तीसरा पहलू, पहला आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा शैक्षिक। वैदिक सिद्धांत में ऐसे सिखाया जाता था कि एकता ही सामर्थ्य है, हम जितने एक रहेंगे उतने हम टूटेंगे नहीं। एक का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि हिंदू और मुसलमान एक, या मैं वैसे बोलता हूं परिवार में भी पांच भाई रहेंगे ना, कितना भी क्वालिफाइड एक दो बच्चे रहेंगे ना, उसको पीट लेते थे आराम से, तो चलती उनकी थी। तो मुट्ठी में शक्ति है ऐसे भी बोलते थे। यहां छोटा परिवार सुखी परिवार चालू हो गया। परिवार बाद में हम दो, हमारा कुछ नहीं, लेकिन गलती से हो गया तो एक, और बहुत बड़ी गलती की तो दो। आपने तीन पैदा किए तो आप आउट, समाज से बाहर। तो ऐसी सिचुएशन आ गई। तो इससे, और आपको हंसी आ रही है, आप जरा अपने बच्चों के पहली दूसरी के किताब खोलो कि जिसमें उनके मन में ऐसा वो इंप्रेशन आ जाता है, उसमें मैं एक छोटी चिड़िया और मेरा छोटा घोंसला, उसमें से एक ही अंडा, ऐसा कुछ तो रहता है कि जब उनको ऐसा लगने लगता है कि अरे मैंने उसके दो दो समझो भाई बहन रह गए, तो उसको गिल्टी फीलिंग आता है कि क्या है मेरे माँ पिता मेरे को दो भाई बहन। तो दिस इज अ मैंने कैसे हमको ये एजुकेशन कैसे हमको वो ब्रेन वॉशिंग करता है वो जरा सीखने की है। दूसरा, हमारे वैदिक सिस्टम में क्या है कि गलतियां दिखा देते थे सीधा सीधा, उसमें वो छुपाते नहीं थे। यहां कैसा है कि गलतियों के अपराध बोध को भाषिक आवरण से छुपा लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, इसमें भी प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक बार लेक्चर लिया था तब। जैसे मैंने कहा कि हिंदी में हम क्या कहेंगे, विभक्त परिवार, संयुक्त और विभक्त। विभक्त हर्ट होता है, कोई सिर्फ तीन ही लोग या चार लोग रह रहे हैं, माँ पिता की तरफ देख नहीं रहे, तो विभक्त हर्ट होता है कि अरे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिविजन, ऐसे लगता है। या एकल परिवार, अकेला ही रह गया ऐसा, तो उधर कैसे न्यूक्लियर फैमिली साउंड्स गुड ना। या दूसरा है कि हम कोई जो आर्थिक उत्पन्न के लिए शरीर विक्रय का व्यवसाय करते हैं उसको कहते हैं वेश्या। इंग्लिश में वेश्या को कमर्शियल सेक्सुअल वर्कर कहते हैं, पहले तो प्रोस्टिट्यूट कहते थे लेकिन उनको बोला कि नहीं 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 ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी समाज का एक घटक है। बाद में उसको उनको कमर्शियल सेक्स, लेकिन कमर्शियल सेक्सुअल वर्कर भी जरा हार्श लगता है। CSW समझता है किसी को CSW क्या? जैसे हम पहले कहते थे कि बच्चा गिरा देना, कितना हार्श लगता है ना, मैंने कितना बड़ा पाप किया ऐसे लगता है। एबॉर्शन भी अच्छा नहीं लगता। फिर MTP समझता ही नहीं क्या हुआ है। तो ये जो है ना, वैसे ही हमारे जो नौकरी, जिसको हम नौकरी कहते हैं, उसको सर्विस बना दिया। अभी मंदिर में आकर आप ड्यूटी वर्शिप कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, बाद में कुछ सेवा कर रहे हो, तो उसको सर्विस ठीक है, जिसको आप कुछ नहीं ले रहे हो, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर रहे हो। और हालांकि वो चर्च में भी जाके सर्विस करते हैं, जिसका कुछ मुबदला नहीं लेते वो, लेकिन उन्होंने नौकरी को भी, जहां हम हमारा स्वातंत्र्य बेच देते हैं, जिसको वो फीलिंग आना चाहिए कि नहीं मैं तो सबसे बंधा हुआ हूं इंसान हूं, मुझे इससे छूटना चाहिए क्योंकि मेरा आत्मा का विरुद्ध चल रहा है ये, उसको सर्विस बोला, मैं सर्विस कर रहा हूं। पूछना चाहिए किसने सर्विस बोला, तो क्या कुछ नहीं ले रहा है क्या, फ्री में कर रहा है क्या? जिसका पैसा ले रहा है उसको सर्विस नहीं कह सकते, वो तो नौकरी है, चाकरी है। तो ऐसे शब्द बदल बदल के उन्होंने जो कुछ भी उनको चाहिए और जो अपराध हो रहे थे, गलतियां हो रही थी, उसको ढकना चालू कर दिया। फिर वो जब हमें गलतियों का एहसास ही नहीं हुआ तो हम सुधरेंगे कैसे? तो वैसे करके उन्होंने परिवार व्यवस्था को तोड़ना चालू किया। अभी ऐसे हम इतने भी तो दिमाग से गए गुजरे नहीं है कि कुछ फायदा ही नहीं है उसमें दिखता मुझे, फिर भी वो मैं ब्रिटिश कह रहे इसलिए कर रहा हूं, या कोई राजनीतिज्ञ कह रहा है उसलिए कर रहा हूं, या मेरे, तो कौन कौन से फायदे हैं एकल एकल परिवार का आकर्षण क्या है, फायदे नहीं कह सकते, आकर्षण लाइक इल्यूजन या मिराज। हमें जब हम जब संयुक्त परिवार में रहते तो अरे वो देखो ना कितने अच्छे, मन में आए तो मूवी जा सकते हैं, मन में आए तो उनके लिए वो कर्मकांड वगैरह नहीं है कि मेरे यहाँ कैसे कि गणपति के साथ वो पूजा रहती है, 5 दिन बैठना पड़ता है, बाद में फिर नवरात्र आ जाता है, कहीं जाने ही नहीं मिलता है। तो तात्कालिक स्वातंत्र्य, कोई नया नया पढ़ा लिखा, दोनों नौकरी पे जा रहे हैं, नौकरी से आ रहे हैं, बाद में फ्री टाइम है, कोई पूछने के लिए नहीं तुम क्या करोगे, तो क्या स्वातंत्र्य है? व्यक्ति स्वातंत्र, मुक्त वातावरण है। पहले के जमाने में तो समझो थोड़ा पल्लू रखने की आदत थी माताओं को, उसके बाद कम से कम जब ससुर के सामने या बड़े बुजुर्गों के सामने रहेंगे तो ढंग के कपड़े तो पहनने पड़ते थे। अभी मुक्त है, हम दो ही है तो क्या है, और कोई फोन करके आएगा तो हम कहेंगे हम बिजी है मत आओ। दूसरा, दायित्व से मुक्ति, माने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी उनको मुक्त लगता था कि समाज के प्रति क्या है, वो तो हमने पढ़ा है इसलिए हम कमा रहे हैं, समाज ने क्या दिया है, हमने तो उनसे छीना है, हमारा अधिकार बोल के छीना है। तो और दूसरा, एकल परिवार में जब दो माने एक लड़की और लड़का एक साथ आते थे तो उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रहता था। इसलिए अभी भी देखो जब शादियां शादी के लिए एक दूसरे को देखते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप माता पिता के साथ रहने वाले हो या हम अलग फ्लैट में जाएंगे। कोई कोई महानुभाव ऐसे माता पिता भी रहते हैं कि वो उसकी शादी के पहले ही फ्लैट ले लेते हैं। बेटा क्या है, वो झगड़ के जाने से अच्छा है कि पहले उसको निकाल देता हूं। अने देखो कहां तक ब्रेन वॉशिंग हुआ है देखो, अरे कम से कम ट्राई तो करो, फेल हो गए तो चलेगा लेकिन ट्राई भी नहीं करने का। फिर वो अलग अलग त्योहारों के टाइम वो एक दूसरे को मिलते हैं। वैसे एक त्योहार को फिर एक अपनी जो बहुरानी होती है वो फिर उनके सास ससुर के पास जाती है। सुबह उठते उठते ही सासू माँ को बहुत बड़ा ग्लास बादाम का दूध देती है, मालूम है ना क्यों, कौन सा त्योहार था वो तो दो वैचारिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति रहते हैं वो, जो एकल परिवार का प्रचार करते हैं, जो जिनको एकल परिवार में जाना होता है, तो इसलिए दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंडिविजुअली कॉम्पिटेंट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है इसलिए दो लोगों को इकट्ठा आना पड़ता है, सिर्फ वो चीजों के लिए वो एक साथ आते हैं, और इसलिए वो संबंध जो बनता है उसको आध्यात्मिक स्वरूप न होने के कारण उसको कोर्ट में जाके एग्रीमेंट करना पड़ता है, जिसको मैरिज कहते हैं। क्योंकि वहां ना समाज केंद्र में है ना परिवार केंद्र में है, सिर्फ तू मुझे कौन सा कितना सुख दे सकते हैं और मैं आपको कितना सुख दे सकते हूं इसके ऊपर ही हमारा एग्रीमेंट है। तो उसके लिए तो दो साक्षीदार लगेंगे साइन करने के लिए, फिर वो फिर बाद में जाके फिर उसका डिवोर्स होगा तो फिर किसको कितना मिला, किसको किसका कितना गया, उसका हिसाब भी होगा, क्योंकि ये तो व्यवहारिक संबंध है, इसमें कोई संस्कार की तो नाम की चीज ही नहीं है। फिर एकल परिवार जब होते हैं वो एक्चुअली ऐसे होते, कोई बोलता होगा लेकिन मन में तो यही होता है। तो ये करार होता है विवाह का, ना कि संस्कार। फिर आप उनके विवाह भी देखोगे तो वो वैसे ही होते कि श्लोक कोई तो बोल रहा है, हमें तो एंजॉय करना है। तात्कालिक आर्थिक संपन्नता उनको लगती है, क्योंकि क्या है, अभी अभी पास आउट हुए, अभी तो कुछ बीमारी नहीं है, 25 30 35 साल की उम्र है, उनको लगता है ऐसे ही चलेगा सब कुछ, तो इतना सारा सैलरी आ रहा है, इन्फ्लेशन नहीं है, तो अच्छा सेविंग हो रहा है, तो फिर वो उसमें मजा जो है भौतिक मजा वो लेने का प्रयास करते हैं। तो ये सब आकर्षण है हमारे नए पीढ़ी को कि हमें माता पिता के साथ बंधुओं के साथ नहीं रहना है, हमें अकेला रहना है, हमारा व्यक्तित्व का विकास करना है, समाज जाए भाड़ में। अभी समाज भाड़ में जाएगा तो व्यक्ति विकास कैसे होगा, तो ये उनकी चाह रहती है कि अंदर क्या है, अंदर खोखला है लेकिन ऊपर ही उनको लगता है कि दिस इज सक्सेस, सक्सेस ऑफ मैरिज लाइफ। तो अभी ये सब कुछ है तो दुष्परिणाम क्या है? बेनिफिट्स और कुछ भी आ सकते हैं। कभी कभी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली रहेगी तो कुछ थोड़ा सहन करना भी पड़ता होगा, लेकिन उसके मुनाफा बहुत ज्यादा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सहभागिता का अभाव, जो कुछ करना है मुझे ही करना है, जब तक दम है या जब तक लिमिटेड टास्क है तब तक मुझे अच्छा लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बार बार वही कितने बार करेंगे, फिर प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो सहभागिता क्या, मैं तू तू मैं और तू तू मैं चालू हो गया तो कोई भी नहीं। तो इसलिए दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है संस्कार कुलाचार के प्रशिक्षण का अभाव। अभी आप देखोगे हमारे मंदिर में भी या बाहर भी माताओं को और प्रभु जी को बच्चे को पकड़ना भी नहीं आता है। कोई कुत्ता बिल्ली को पकड़े ना ऐसे बच्चे को पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे कहीं तो अभी वो मैं दिखा भी नहीं सकता, यानी इतना बेसिक ट्रेनिंग वो भी नहीं आता है। तो कुकिंग या कोई गेस्ट आए तो उसको कैसे रिसीव करना है, समाज में जाके कुछ उनको बोलना रहेगा तो क्या बोलना है, कुछ नहीं आता हमें। सिर्फ मेरे कितने फ्रेंड्स हैं उनको मैं बोलता हूँ कि यार तुम्हारा सामाजिक अस्तित्व क्या है, वो बोला देखो भाई हमें पैसे कमाने आता है उतना करने दो, ऐसी स्थिति है। और इसलिए वो कितना भी कमाए ना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि सिर्फ आर्थिक हमारी सुबत्ता ये हमारा पूर्ण विकास नहीं है, और वो भी जानते हैं लेकिन दूसरा कुछ ट्रेनिंग लिया ही नहीं। किसी माता पिताओं ने किसी लड़की को आगे जाके उसको परिवार में एक परिवार की एक्टिव स्त्री बनना है ऐसा ट्रेनिंग दिया ही नहीं। जिनको सिर्फ लड़कियां है वो तो और ऐसे कहते हैं अरे ये तो मेरे लिए लड़का ही है, मैं इसको सोचता ही नहीं लड़की है। अरे निसर्ग ने उसको लड़की बनाया है तो उसको लड़का सोच के क्या फायदा है, और फिर दो लड़कों की शादी हो गई तो आगे क्या होने वाला है। फिजिकली एक लड़की एक लड़का हो सकता है लेकिन दिमाग में दोनों का कॉम्पिटिशन एक ही जैसा है, मुझे भी कार चलानी है, मुझे भी बैंक अकाउंट में आपसे आपके बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा होना चाहिए, मैं भी आपके जैसा खर्चा करूंगी। अरे बच्चा कौन पैदा करेगा और घर की सफाई कौन करेगा, मैंने सफाई माने झाड़ू नहीं, घर का अच्छा रखरखाव कौन करेगा रखेगा। तो दोनों का कंपटीशन एक ही, फिजिकल डिफरेंसेस मेंटल डिफरेंसेस होते हुए भी फिर झगड़ा होने वाला है। इसलिए मैंने एक कोट पढ़ा था कि आज के जमाने में लड़कियों को कराटे और बच्चों को पराठे, लड़कों को पराठे आना जरूरी है। एक्चुअली हंसने की नहीं, रोने की बात है। तो सतत आर्थिक असुरक्षितता का भाव रहता है इनमें, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग कहते कि अरे हमें तो पेंशन नहीं मिलने वाला, हम जो कमाएंगे जो, और ये लोगों को ना ये इन्वेस्टमेंट वाले इतना फंसाते हैं कि वो खुद के वर्तमान में भी इतना नहीं करते लोगों के लिए और खुद के लिए, क्योंकि फ्यूचर में लगेगा ऐसे। और उनकी स्थिति कैसे होती है कि जब चना है मराठी में जब चने आए तो वहां दांत नहीं, जब दांत आए तो वहां चने नहीं, और क्योंकि समझो ये परिवार रहता तो क्या है, एक आदमी रहता है गॉडफादर कहो या मेंटर कहो या कोई तो एक बड़ा बुजुर्ग रहता है, मैं हूं ना तू कर, इससे रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनका कुछ समाज के लिए कुछ ठीक है, मैं इतना बड़ा डोनेशन दे रहा हूं लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ तो आप है ना, हाँ मैं डोनेशन नहीं दे पाऊंगा लेकिन तुझे मैं वो विदाउट इंटरेस्ट तुझे मैं वो चलाऊंगा, तुझे देना है डोनेशन तो दे दे। इसलिए बड़े बड़े मंदिर तब खड़े हो पाए, बड़े बड़े व्यवस्थाएं खड़े हो पाए, बड़े बड़े तालाब खड़े हुए, बाद में हमारे सरकार ने वो सब बंद कर दिए, वो बात अलग है, लेकिन तब कोई गवर्नमेंट नहीं था, तब टैक्स कितना था मालूम है आपको, हमारे मनु संहिता में बताया है टैक्स कितना लेना चाहिए, इफ यू आर टेकिंग मोर देन 6% यू विल डेफिनेटली गो टू हेल। सिर्फ 12% टैक्स कब लेने को बताया है, जब बहुत बड़ी आपत्ति आपके राज्य पर है, जैसे आक्रमण है या कोई 2-3 साल पानी ही नहीं गिरा है तो सिर्फ 12% टैक्स ले सकते हैं जहां पानी गिरा है वहां से, कि वो मदद करेगा, और वैसे भी वो करते थे। अभी कितना परसेंट टैक्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करके मोर देन 50%, और फिर भी सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये आर्थिक असुरक्षितता का भाव हमें क्या क्या करने से रोकता है? कुछ अच्छा काम दिखता है फिर याद आता है, नहीं यार लेकिन फिर क्या, वो कुछ हो गया तो अभी मेडिसिन के मेडिक्लेम के बिल कितने बड़े बड़े आते हैं, तो थोड़ा सा मेडिक्लेम बढ़ा देता हूँ, थोड़ा पैसा ज्यादा मिला। पहले के जमाने में 20% निकाल लेते थे प्रॉफिट, बाकी सब एक्स्ट्रा प्रॉफिट किधर, तो दान करके खत्म, हिसाब खत्म, नेक्स्ट ईयर नया घड़ी नया राज। तो ये नहीं होता है अभी, क्योंकि परिवार एकत्र नहीं है, एकल परिवार का दुष्परिणाम है, अस्तित्वहीन समाज जीवन, समाज में तो कोई उसका प्रेजेंस ही नहीं है वो आदमी का, समाज का उसका, समाज का जो सिर्फ जो खिड़की है समाज की तरफ देखने का वो कहाँ है, टेलीविजन, जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ समाज है एक्चुअली, जो उनको मीडिया को दिखाना है वही दिखाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मीडिया वाला दिखाता है, अभी कैरो कैरो का जो एग्जांपल हुआ ना, कैरो में वो एक बड़े चौक में बहुत सारा लाठीमार हो रहा है और ऐसा सब कुछ बोल रहा था एक, तो वैसे एक कैरो में उस चौक में रहने वाला एक आदमी ट्वीट कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं, मैं यहाँ खिड़की से देख रहा हूँ, नीचे कुछ नहीं है, और बाकी सब सारा समाज देख रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है उधर। तो हमें भी मालूम नहीं है कि वो दिखा रहे वो सही है कि नहीं, तो ऐसे सामाजिक विंडो में रहते हैं ये लोग और फिर मुश्किलों का सामना करते हैं। और सांस्कृतिक परावलंबन, मुझे मालूम है वो फास्ट फूड अच्छा नहीं है लेकिन क्या करे, सुबह 8 बजे तो कौन कुकिंग करेगा, मुझे जाके वो पावड़ा ही खाना पड़ता है। मुझे मालूम है वो पैक्ड फूड जो है, जो समझो पिल्सबेरी आटा है या रेडी टू कुक मटेरियल है, वो अच्छा नहीं, लेकिन घर में करने के लिए है कौन? अरे तुमने निकाल दिया बाहर जिनको, उनको बुलाओ वापिस, पैर पड़ो, वो प्यार से करेंगे, लेकिन नहीं। तो सांस्कृतिक परावलंबन, इसको प्रज्ञापरात कहते हैं आयुर्वेद में, कि गलती से हुआ ठीक है लेकिन समझ कर जो गलती करता है ना उसको ज्यादा दंड मिलता है। फिर ये लोगों को सबसे पहले 35-40 में डायबिटीज लग जाता है, चलो टैक्स भरना चालू करो। तो सांस्कृतिक परावलंबन ये एक चीज है। और अभी ये एकल परिवार जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि आगे 5-6 साल या 10 साल में क्या होने वाला है। मैं अभी एक दो डिसीजेस पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ, बच्चों के डिसीजेस है, एक का नाम है ADHD, माने हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। पहले के जमाने में अनाउंसमेंट बार बार नहीं करना पड़ता था कि बच्चों को संभालो बच्चों को संभालो, अभी करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि हाइपर एक्टिविटी बढ़ गया है बच्चों का। दूसरा है कि उसका एक्सट्रीम एंड है जिसको ऑटिज्म बोलते हैं, उसको स्वमग्नता कहते हैं। तो अभी अभी हमारे जो इस्कॉन के अच्छे पेडियाट्रिशियन है, एक माधवानंद प्रभु बोल के, उनसे मैं अभी परसों बात कर रहा था ये दोनों डिसीजेस के बारे में। तो उन्होंने उनकी याद बताई, वो लगभग 80 के दशक में वो MD पेडियाट्रिक्स कर रहे थे, 88 या ऐसा कुछ तो था। तो तब वो पूरा बंबई में 4 जो कॉलेजेस है, 3 म्यूनिसिपालिटी के और एक गवर्नमेंट JJ, वो मिलके उनको पूरे 3 साल में एक ऑटिस्टिक लड़का मिला। तो वो सारे लोग, सारे पेडियाट्रिक जो ये कर रहे थे MD, वो सारे वो कॉलेज में दौड़ पड़े वो ऑटिस्टिक लड़का को देखने की, ये कैसा बिहेव करता है देखो तो जरा। आज भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो मीरा रोड माने बंबई के कोने में है, बंबई में भी नहीं है बोला तो भी चलेगा, उसमें हर हफ्ते एक ऑटिज्म का नया केस मिलता है। इमेजिन द सिचुएशन कितना गड़बड़ हो रहा है। और ADHD तो हर एक घर में ही, मैंने उसके कुछ बताया तो हर एक घर में लगने लगा कि यार मेरे इसमें थोड़ा तो ट्रेड दिख रहा है मेरे बच्चे में। तो ये प्रॉब्लम है। अरे प्रभु इसको साउंड का। तो एकल माता का प्रॉब्लम ये है, उसको व्हाट्सअप भी करना है, बच्चों को पिलाना भी है, बाद में सुलाना भी है, और पेट भी चाहिए। पेट नहीं रहेगा तो भी सोशल प्रेशर आता है कि अरे तुम्हारे घर में पेट नहीं है, वो रास्ते पे भूखे रहेंगे आदमी चलेगा, लेकिन घर में एक ऐसा फुगा हुआ ये तो चाहिए, कुत्ता या बिल्ली चाहिए, वो स्टेटस है। करू तो जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म को स्वमग्नता ऐसे कहते हैं, वो बच्चे मतिमंद नहीं रहते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते माँ पिताजी को। हमने डिस्कस किया कि अभी कर्म का रिएक्शन इतना भयानक आया है कि लोग इतने स्वार्थी इतने स्वार्थी इतने स्वार्थी हो गए कि बच्चे भी इतने स्वार्थी हो गए कि वो माँ पिताजी को देखने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो कर दे। तो वो जब क्रैश होता है, ऑटिज्म का बच्चा जब क्रैश होता है, खुद को ही सफर करने का प्रयास करता है, तो उसकी ये स्थिति होती है। अरे सॉरी, क्लिक करना चाहिए। अभी बंबई तक तो आ गया है, तो आप अभी सुधरो। और हमारे अभी जो बच्चे शांति से बाहर खेल रहे उनको जाके जरा गले लग जाओ कि अरे कि मेरा नसीब अच्छा है कि ऐसे बच्चे नहीं पैदा हुए। एकल परिवार के सामाजिक दुष्परिणाम क्या है? बढ़ते विवाह विच्छेद यानी तलाक। ये तलाक ये उर्दू शब्द है, हिंदी में संस्कृत में इस चीज के लिए शब्द ही नहीं है। वो सावरकर ने घटस्फोट बोल के उसका नाम दिया था कि एक्चुअली वो स्पोट ही रहता है और सिर्फ दोनों के बीच में नहीं रहता है तो पूरे दो परिवार उद्ध्वस्त होते हैं, तो वो मराठी में घटस्फोट कहते हैं। लड़के बढ़ते हुए विवाह विच्छेद क्यों? क्योंकि एक साथ आने का ही हमारा पर्पज है कि एक दूसरे को कितना तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं, लेकिन एक खुजाना बंद कर देगा तो जाने दो, दूसरा कोई रेडी है मेरी पीठ खुजाने के लिए, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? तो इसलिए अभी आप देखो कि जिनका संयुक्त परिवार है उनमें डिवोर्स का परसेंटेज कम है। जहां अर्निंग जो है वो अर्निंग माताएं भी मुझे भी कमाना है ऐसे न करने वाली है, जिनको परिवार की जो विशेषता है उसको वो बरकरार रखने का प्रयास कर रही है, वहां डिवोर्स के प्रॉब्लम कम है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, महिलाओं का शोषण भी समाज में हो रहा है, क्योंकि अभी जब विवाह विच्छेद हो जाते हैं या उसके पहले भी उसको पति पे विश्वास नहीं है इतना कि वो मेरा प्रोटेक्शन करेगा, तो इसके लिए उसको बाहर जाके अर्निंग करना है, फिर समय कौन सा भी रहे कुछ भी रहे लेकिन मुझे तो मेरा स्टेटस मेंटेन करना है। तो फिर महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे ये एकल परिवार से निकल रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग नहीं है महिलाओं से कैसे बर्ताव करना चाहिए। वो दुर्व्यवहारी बच्चे, मी लहानपणी असा नव्हतो, प्रत्येक जण हेच समजतो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम बचपन में ऐसे क्यों नहीं थे, क्योंकि हमारे माता पिता कैसे बर्ताव करते थे। हम हमारे माता पिताओं जैसा बर्ताव न करते हुए भी वो जितना वक्त हमें देते थे, जितना उनके पास था, जो क्वालिटी वक्त वो देते थे, वो हमारे इंद्रियों को हमारे मन को नियंत्रित करने का हमें जो ट्रेनिंग देते थे वो बिना दिए भी वो बच्चे अच्छे होने चाहिए वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और ऐसे एक्सपेक्टेशन में वो क्या करते हैं, हम लोग उनको बाल संस्कार केंद्र में डालते जो पैसा लेके इनको संस्कार देने वाले हैं। माने अस्पताल, अनाथालय, बाल संगोपन केंद्र, वृद्धाश्रम की बढ़ती हुई संख्या दिखा रही है कि हमारा एकल परिवार ये सामाजिक दुष्परिणाम कर रहा है। यहाँ एक माता पिता कहते हैं, पोरगा अभ्यासाला लागला बर का, फेसबुक विकत घेण्यासाठी 5,000 रुपये घेऊन गेला है, बच्चे बिगड़ रहे हैं।
How to recognize ADHD symptoms in children. Is your child high-spirited and unfocused, or suffering from attention deficit hyperactivity disorder? These ADHD guidelines will help you decide if a checkup is in order. You will need an analysis of their behavior, an idea of how long it's been going on, and a visit to the pediatrician. Step 1. Note their capacity for concentrating. Most young children have short attention spans, but those with ADHD don't seem to be listening even when they're spoken to. They frequently lose things, have difficulty following instructions, and often make careless mistakes. Step 2. Recognize if their energy level seems excessive, even for a child. Are they unable to sit without fidgeting? Do they get in trouble at school for leaving their seat, or running and climbing excessively or inappropriately? Do they talk incessantly? Interrupt constantly. Some children are more inattentive than hyperactive, and vice versa. Girls are more likely to have more attention problems, while boys more often fall into the hyperactive category. Step 3. Consider how long the behavior has been going on. If you've observed symptoms for more than 6 months, it might be ADHD. Step 4. Note where the behavior takes place. If it's only at home or only at school, something other than ADHD may be to blame for their symptoms. Step 5. Gauge the seriousness of the problem. Children with ADHD are regularly disruptive at school and at home. Their behavior causes problems in their relationships with both adults and other children. Step 6. If you recognize any of these symptoms in your child, take them to your pediatrician. It's important that they have a medical checkup to rule out other causes for their behavior before ADHD is diagnosed. Did you know? Children whose mothers had smoked while pregnant were more than twice as likely to have ADHD as children whose mothers did not smoke.
अभी इसके जो और दो तीन रीजन है उसमें एक है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स माने इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेगनेंसी में जिनको ज्यादा एक्सपोज होते हैं उनके बच्चे एडीएचडी का प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा कि जो माता है, माताओं की प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी से पहले या बाद में भावनाओं का ऊंचा नीचा ज्यादा होता है, जैसे टीवी की सीरियल देखने के बाद इनका होता है कि अभी उसका उसके साथ शादी होगा, ये मर के वापिस पैदा होगा या नहीं होगा, फिर ये इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसा जो पंचकोण हो गया तो किसी का समझ में आया दूसरे को तो क्या होगा, ऐसा सब कुछ जो टेंशन लेते हैं और बेड रेस्ट लेते हैं। हालांकि बताया गया है कि मन शांत रखना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, ये शरीर को शांत रख देते और मन को चंचल बनाते। सीजरियन होना ही है ना, ऑब्वियस है। तो इसके लिए ये ADHD भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है। सृष्टि पर दुष्परिणाम क्या होते हैं? अधिक जहरीला कचरा पैदा करते हैं ये लोग जो एकल परिवार में रहते हैं, क्योंकि सामान छोटा छोटा लेके आते हैं, पैक्ड फूड लेके आते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में रख के खाते हैं, माइक्रोवेव चलाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर ज्यादा यूज करते हैं, सब कुछ जो जहरीला कचरा है ज्यादा पैदा करते हैं। दूसरा, पर्यावरण का ह्रास इनके कारण ज्यादा होता है क्योंकि उनको शो ऑफ करना रहता है। बाद में 6-6 महीने बाद एक कार चेंज करेंगे, 3-3 महीने बाद कपड़े चेंज करेंगे, ये सब कुछ क्योंकि उनको परिवार का सपोर्ट नहीं है, उनका स्टेटस दिखाने के लिए सिर्फ एक्सटर्नल चीजें ही है, तो क्या करे बेचारे। अच्छे कामों के लिए समय की कमी है क्योंकि सब कुछ मेरे ऊपर ही है और कोई मुझे ये नहीं करने वाला, तो फिर वो 60 साल के होने के बाद भी एक्सटेंशन लेते, 5 साल में कहीं तो काम करे तो थोड़ा पैसा लेके। तो अच्छे कामों के लिए समय की कमी होने के कारण एक मेरे एक सामाजिक एक विचार विचार करने वाले एक बहुत बुजुर्ग थे, वो बोले देव, दानव और मानव, इनको सामाजिक दृष्टि से देखा जाए ना तो बहुत आसान व्याख्या है इनकी। देव जो है जो समाज से लेता कम है देता ज्यादा है। उदाहरण के तौर पे हम इंद्र का भी उदाहरण ले, छोटा सा यज्ञ में कुछ तो प्रसाद लेते हैं और बहुत सारा बारिश दे देते हैं, तो देव है। मानव कौन है? कम से कम जितना लिया है उतना समाज को देता है। और दानव कौन है? बिना दिए चलेगा तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा देके ज्यादा से ज्यादा कितना मेरे लिए रखूं। तो अब ये एकल परिवार किस कैटेगरी में आते हैं वो देखना पड़ेगा। और समझो हम दानों के कैटेगरी में है तो मन शांति और सुख ये तो संकल्पना ही रहेगी, वो तो कभी होने वाला नहीं है। अरे इधर कोई तो पिक्चर था। हाँ, फिर इनका ये सिचुएशन होता है, मॉडर्न पीपल वो डायरेक्ट ग्रेव में जाता है लेकिन पैसा नहीं मिलता। एकल परिवार के आध्यात्मिक दुष्परिणाम भी है, इसलिए अभी बोलते हैं प्रीचिंग डिफिकल्ट हो गया है, किसी को बताने जाओ तो भी वो सुनता नहीं, व्हाट्सएप ही देखता रहता है, क्या फेसबुक में देखता रहता है ऐसा। तो रजोगुण के कारण आयु घटती है। ये सब जो सोच है कि सब कुछ मुझे ही करना है, आई एम द डूअर, नहीं तो मेरा क्या होगा, इसके कारण रजोगुण बढ़ता है। मैं ही सुख का एक भुगता हूं, मैं केंद्र स्थान पे हूं, कृष्णा एट पेरिफेरी, आई एम एट द सेंटर, तो टेंशन आने वाला है। तो स्ट्रेस आने के बाद रजोगुण के बढ़ने के कारण आयु घट जाती है। तो वैसे ही जो 50 साल के बाद के जो दो है, एक तो वानप्रस्थ आश्रम और दूसरा संन्यास आश्रम, उसमें से संन्यास तो गायब हो जाता है। कुछ कुछ तो, अरे 63 ईयर ओल्ड यार, मैं 55 तक जीऊंगा कि नहीं भी मालूम नहीं, ऐसे बोलते। कुछ कुछ लोग ऐसे खुशी से बोलते कि अरे ऐसे जीने का, लेकिन 50 में ही मर जाने का, वो बाद में तकलीफ कौन लेगा। अरे यानी सब कुछ मैं लूंगा लेकिन जब देने का टाइम आएगा तब मैं मर जाऊंगा। तो रजोगुण के कारण घटती आयु। वानप्रस्थी जीवन के लिए समय नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लड़के हैं, 30 साल की उम्र हो चुकी है, MBA करके घर में बैठा है, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, इसलिए फिर ये 65 ईयर्स का पिताजी अभी भी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इसको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, इसको वो सर्टिफिकेट के हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है। अरे लेकिन हाथ में तेरे को उसके हाथ से क्या आता है वो तो बताओ, एक कीला तो सीधा मार सकता है क्या, या प्लम्बर का वो पानी गिर रहा है तो वॉशर बदल सकता है क्या नल का, या इलेक्ट्रिक फिटिंग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता नहीं, लेकिन वो MBA है। अरे क्या खाक MBA। तो वानप्रस्थी जीवन इसलिए गायब हो गया है। और जो जिनके नसीब में वानप्रस्थी जीवन है वो टीवी प्रस्थी हो गए, उनको लगता है कि अभी मेरे जीवन का जो कुछ भी अभी तक मैंने जो कमाया है उसका अभी वसूल करना है, तो क्या करेंगे, वो टीवी के सामने बैठेंगे और टीवी देखेंगे, और वहां छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको दादा दादी कहानी सुनाएंगे ऐसे लगता है, लेकिन इनके पास वक्त ही नहीं रहता है उनके लिए। तनाव के कारण बढ़ती बीमारियां, जो कुछ भी 50 के आगे चला भी जाता है तो भी वो जीता है लोगों के लिए। कौन से लोग? डॉक्टर, हॉस्पिटल, बैंक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो भी तो समाज कार्य है, इससे भी GDP बढ़ता है। तो यानी आपको समाज के लिए जीना है, बीमार होके जीना है या अच्छा रह के जीना है वो आपको डिसाइड करना है। और अमूल्य मानव जीवन के लक्ष्य से वो भटक जाता है, बाद में सब कुछ समझता है लेकिन क्या है, सब करता है पर वर्त नहीं, ऐसी सिचुएशन होती, फिर उनकी भगवत गीता जैसी आए तैसी रह जाती। तो यहां पूछता कि देवा माणूस जास्तीत जास्त किती वर्ष जगतो रो, तो मुलगा म्हणतो आयुष्यातील फारच थोड़े दिवस तो जगतो, बाकी सगळे दिवस तो फक्त जिवंत असतो। तो ये लोगों की ऐसी स्थिति होती। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा कहना है, देखो हम इस संस्था से जुड़े हैं, इनका फिलॉसफी एकदम स्ट्रांग है, तो मैं मेरा घर कैसे भी चलता रहे लेकिन मैं अंदर से स्ट्रांग हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं ये अलाना फलाना ढमका सब कुछ कर रहा हूं, तो मेरा तो डेस्टिनेशन फाइनल है, मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं अकेला ही काफी हूं। तो अकेला कोई भी काफी नहीं है, जरा देखो इधर क्या होता है अकेले का।
يقع في ورطة كبيرة،
دكرا ہے؟
والآن يشن الجاموس هجوما باستعمال دفاعه المطلق الهجوم.
Thank you.
يموت ملك الغابة، تقتله في دفاع عن النفس.
तो इतना घमंड इतना गुरूर भी आपके आर्थिक स्थिति पे आपके वैभव पे आपके कर्तृत्व पे हमारे सॉरी आपके नहीं हमारे कर्तृत्व पे हमने नहीं रखना चाहिए क्योंकि भौतिक प्रकृति का तो पूरा प्लान रेडी है दुर्गा देवी का कि समझो जिनको अकेले रहना ना उसको अकेले में निपटाना बहुत आसान है। यहाँ देखो जिसका जिसका जो भक्ष्य है वो भक्ष्य ने भक्षक को खा लिया मार दिया खाया नहीं मार दिया। तो ऐसी जो चीज कि जो रोजाना जैसे अभी आपको एक डॉक्टर नीतू मांडके सुना होगा नाम जिन्होंने शिवसेना प्रमुख का हार्ट अटैक और बोला था हिंदू हृदय का हिंदू हृदय सम्राट का हृदय मेरे हाथों में बोला था हार्ट अटैक से ही मरे। समझ रहा था क्या हो रहा है टेक्स्ट बुक में पढ़ा वैसे हो रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो जिसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा कंट्रोल है ना वही हमको चकमा मार देगा और हमें कहीं का नहीं रखेगा। तो इसलिए तो ये एक छोटा सा ग्राफ है कि एक्चुअली विभक्त परिवार और संयुक्त परिवार की तुलना हमने ग्राफिकली की तो सुख की तुलना की तो शादी होते होते नए नए जो जो जोड़ा रहता है उनको लगता है कि अरे फ्रीडम है बाद में हमें जो कुछ मन में आए कर सकते हैं किसी किसी के सामने ना पल्लू ओढ़ने की जरूरत है ना झुकने की जरूरत है कौन कमर में इतना झुक झुक के कमर दुखाएगा। तो पहले लाभ लगते हैं लेकिन वो जब धीरे 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 नीचे 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 जाता है और बाद में तपस्या या दुख में कन्वर्ट होता है कि फिर एक बच्चा आया तो बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना मालूम नहीं उसको कहाँ रखना मालूम नहीं किसको बुलाना मालूम नहीं कौन करेगा। तो जैसे जैसे समय रेखा आगे आगे चली जाती है वैसे वैसे उनका जो पूरा लाभ का जो उनका चिंतन होता है वो जो गड़बड़ गड़बड़ होने लगता है और बाद में दुख में। संयुक्त परिवार में हालांकि जब शादी होके विशेष करके कोई नई नवेली दुल्हन एकदम ही बिल्कुल अलग परिवार से आती है तो उनको लगता है अरे बाप रे बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है यहाँ हमें तो कोई वक्त भी नहीं मिलता एक साथ गुजारने के लिए बाकी सब तो छोड़ दो हमारी मेरी इच्छा है वगैरह तो छोड़ दो। लेकिन उसमें भी समझो वो तपस्या होती है तो धीरे 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 जब हमारा जीवन आगे आगे चलता है तो हमें लगता है कि अभी तपस्या का धीरे 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 लाभ में परिवर्तन हो रहा है और वो लाभ कैसे दिखता है ना कि मुझे क्या मिल रहा है एक्चुअली इवैल्यूएशन क्या है हर एक सामाजिक विशेष करके मनुष्य का मैं समाज को कितना दे पा रहा हूं उससे जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि जो लोग संयुक्त परिवार में रह रहे हैं वो हमेशा समाज के लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं एकल परिवार से। तो इसके लिए भी भगवद गीता में श्लोक है कौन सा श्लोक है श्लोक नहीं दोहराऊंगा उसका अर्थ ही बताऊंगा। भगवद गीता के 18वें अध्याय में सात्विक सुख और राजसिक सुख के बारे में भगवान कहते हैं प्रारंभ में विष के समान और अंत में अमृत समान जो लगता है उसको सात्विक सुख कहते हैं और हमें सत्व गुण में रहना है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे सुख आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत अच्छे है हालांकि आपको सुख लग रहे हैं वो आप कन्वीनियंट है उसमें लेकिन उससे आपका आत्म साक्षात्कार के तरफ आपकी प्रगति होने वाली है। लेकिन प्रथम प्रारंभ में अमृत समान अमित होकर राजा रानी और बाद में हम गुजर जाने के बाद मुंह में डालने के लिए पानी भी कोई नहीं पहले राजा रानी और मुंह में नहीं पानी बाद में। तो ऐसे जो अंत में विष समान थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो ऐसा उसको राजसिक सुख कहते हैं और राजसिक सुख है इंद्रिय भोग विषयों के तरफ हमें आकर्षित करता है और उससे मैंने बोला कि रजोगुण की वृद्धि से कैसे हमारा उम्र कम होती है हमारा सामाजिक भावना कम होती है। तो इसलिए थोड़ा सा दुख सहन किया तो भी चलेगा लेकिन संयुक्त परिवार का हम परिवार को हमने स्वीकार करना चाहिए। वैसे हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे एक माताजी ने उस समय ये भी पढ़ कि गोलोक वृंदावन में भी संयुक्त परिवार है नंद के भाई उपनंद बहुत सारे निर्णय डिसीजंस लेते थे नंद महाराज और बाद में वहां रोहिणी थी यशोदा थी सारे गोप मिलके जाते थे तो अभी उसकी प्रैक्टिस भी तो यहाँ करनी है तो इसलिए भी। और वैसे उसका जो रिफ्लेक्शन है इस्कॉन ये भी एक संयुक्त परिवार ही है। यहां ऐसे नहीं चलता मैं मेरी मनमानी करूंगा, मन में आए तो यहां से कूद के भगवान को उधर दंडवत करूंगा, नहीं चलता है। कुछ नियम है, किसी ने बोला, अभी एक तो यहां तो एक सेंटेंस है, प्रभु जी ने कहा है, फिर आगे जो कुछ भी है वो करना है, फिर उधर क्यों मेरे को टाइम नहीं वगैरह, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे अभी महाराज आ रहे हैं, तो महाराज ने कुछ, तो ये जो जैसे हमारे संयुक्त परिवार में रहता है कि एक कोई मुखिया रहता है, वो सबकी जिम्मेदारी भी लेता है और उसको मालूम भी रहता है कि किसको क्या कब देना चाहिए, तो उसके हिसाब से यहां हमारा बर्ताव रहता है। तो समझो हमारा घर में एकल परिवार है और यहां संयुक्त परिवार जैसे हम रह रहे हैं, तो हमारे मन में ही कॉन्फ्लिक्ट होना चालू होता है, तो प्रगति धीरे कम होती है। तो जब हम संयुक्त परिवार का आदमी रहेगा, वो भक्ति में यहां भी जल्दी प्रगति करेगा, कि उसको मालूम है कि कोई हमें अभी जो दुख की बात जो भी बता रहा है वो भी हमारे अच्छे के लिए ही है, क्योंकि वो उसने अनुभव किया हुआ है घर में। और दूसरा, परिवार जितना बड़ा होगा इतना अच्छा क्यों होगा, क्योंकि कलयुग में संघ की शक्ति है, संघ यानी एकत्रित लोगों की शक्ति, अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कलयुग के लिए जो महत्व का जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम में, उसमें भरत महाराज की कथा डाली हुई है कि जो पूरा राजपाट छोड़ के गए थे तो भी उनको अकेले में वो भक्ति का परम लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, उनको वापिस जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए हमें एक साथ रहने की कला, समझो घर में और मंदिर में एक साथ हम ट्रेनिंग ले तो बहुत अच्छा है। और इसलिए कभी कभी ऐसे लगता भी है कि अन्य धर्मियों में समझो बड़ा परिवार रहेगा तो उनका फिलोसॉफी कुछ भी रहे वो हम पे ऊपर हावी हो जाते हैं, तो उनको उनसे बचने के लिए भी हमारा संयुक्त परिवार होना जरूरी है। और एक साथ रहे तो कौन किसको नहीं हरा सकता, वो भैंसे का भी उदाहरण है ही ना। तो यशस्वी संयुक्त परिवार हेतु मानसिकता कैसी होनी चाहिए, तो ये एक श्लोक में, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे वैदिक फिलोसॉफी का एक आधार स्तंभ कह सकते हैं, इसलिए वो तीन यहां साइट किया गया है। महोपनिषद भी हमें आया है, हितोपनिषद में भी आया है और पंचतंत्र में भी है। तो इसका ये क्या है, अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम बहुत जगह हमने वो टैगलाइन बोल के भी यूज किया, आपको मिलेगा। इसका अर्थ ऐसा है कि यह मेरा है और यह दूसरे का है, ऐसा विचार केवल संकुचित भावना वाले ही करते हैं। उदार व्यक्तियों के दृष्टि से तो सारी वसुधा ही अपने परिवार के समान प्रतीत होती है। तो हमारे परिवार में 10-12 लोग रहेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम है, हम तो सोच रहे कि सारी वसुधा, सारे प्राणी पक्षी पेड़ पौधे ये मेरे कुटुंब के सदस्य है। ऐसे जब कोई देखता है तो भगवान भी हमें आश्वस्त करते हैं। 6वें अध्याय में श्लोक आता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणिष्यामि सच मे न प्रणिष्यति। जो सबको मेरा परिवार मानता है, जो सबके हृदय में मैं परमात्मा बोल के स्थित हूं ऐसे देखता है, सबका ख्याल करता है, उसका ख्याल मैं करता हूं। भगवान यहां कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं अदृश्य होता हूं। हमारे लिए भगवान अदृश्य न होना यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि वो कहते हैं न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जैसे एक वो कथा बाद में बताएंगे, जरा टाइम कमी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान भी बोलते हैं कि मैं भी उसके बारे में सोचता रहूंगा, मैं भी मेरे आंखों से उसको ओझल नहीं होने दूंगा। ये बहुत बड़ा बेनिडिक्शन भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको हमारा मान रहे हैं, और उसकी शुरुआत कहां से हो सकती है? हमारे परिवार से। और कहां से होगी? हम हमारे परिवार को लात मारेंगे और बोलेंगे ये सब हमारे भक्त लोग हैं, हरि बोल हरि बोल, और वहां माँ पिताजी रो रहे होंगे, क्या फायदा है? शायद बाकी वैष्णवों को नहीं दिखेंगे, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना। शायद यहां पता भी नहीं चलेगा आपकी सेवा में कि क्या कर रहे हैं सेवा, क्या मालूम वहां क्या हो रहा है, लेकिन भगवान तो सबके हृदय में है ही ना। और सबसे पहले अटैक आपको ही होगा कि टेस्ट आना कम हो जाएगा। तो इसलिए, और व्यक्ति विकास हमारे शास्त्रों में कितना बड़ा है, कितना डिटेल है कि व्यक्ति, बाद में परिवार, बाद में समाज, बाद में राष्ट्र, बाद में विश्व, बाद में समष्टि, बाद में सृष्टि और परमेष्टि की सेवा जब हम पूरे अच्छी तरह से करेंगे तो उसको कहेंगे कि हमारा व्यक्ति विकास पूरा हो गया, और उसको कहेंगे कि हम आत्म साक्षात्कार हो गया। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार अलग अलग नहीं है। जब हमें समझ में आता है कि मैं कौन हूं, उसी समय हमें यह भी रियलाइज होता है कि भगवान कौन है। क्योंकि क्वालिटेटिवली वी आर सेम, क्वांटिटेटिवली भगवान विभु है, हम अणु है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके बारे में किसी को कोई सवाल रहेंगे, कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी या कुछ संशय रहेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसके उत्तर देने का, और नहीं तो प्रभु जी है ही। तो उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है उसमें मेरे कोई इतनी योग्यता नहीं है। जो कुछ योग्यता मुझे मिली है वो गुरु परंपरा से और मेरे कुल परंपरा से मिली है। उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया, मेरे माँ पिताजी ने, मेरे नाना नानी ने, दादा दादी ने, और जो कुछ मैंने यहाँ वैष्णवों के संघ में सीखा है, वही सिर्फ इकट्ठा करके आपने आपके सामने प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास किया हूं। तो आपको कुछ इसमें से सीखने से मिला तो आप गुरु परंपरा को, प्रभुपाद जी को, सबको धन्यवाद दीजिए। और कुछ गलती रहेगी तो एक छोटा बच्चा बोल रहा था ऐसे करके मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद संकीर्तन रस प्रभु। आप लोगों को पसंद आया? तो ये जब इतना सुंदर सेमिनार सुना रहे थे एक एक पॉइंट, तो मुझे एक कहानी याद आई कि एक परिवार में पिताजी अपने बाल काले कर रहे थे, डाय लगा रहे थे। तो अपने पिताजी को बाल काले करता देख उनका छोटा लड़का, उसने व्हाइट पेंट लाया और वो अपने बाल सफेद करने लगा। तो पिताजी पूछते, तू क्या कर रहा है? तो बच्चा पिताजी को कहता है, पिताजी मैंने सुना है घर पे किसी बुजुर्ग का होना जरूरी है। तो आइए धन्यवाद दें हमारे संकीर्तन रस प्रभु को, जो न केवल बोल रहे हैं बल्कि अपने उदाहरण से वो ये प्रस्थापित कर रहे हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। थैंक यू।
हरे कृष्णा, हम यही प्रार्थना।
जय श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
जय श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की, श्री श्रीनिंदाय गौर चंद्र की, शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, दाय गौर प्रेमानंदी, महाप्रसादे गोविंदे, नाम ब्राह्मणी वैष्णवे।